भावात्मक स्तर पर किसी को भी दुख पहुंचाना भी घरेलू हिंसा का एक हिस्सा है। द ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि 3.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस ने 15 साल की उम्र से अपने साथी के हाथों भावात्मक स्तर पर हिंसा या अब्यूज सहा है, और प्रवासी समुदायों में अतिरिक्त ऐसी बाधाएं हैं जिसका असर इस भावात्मक स्तर पर पहुंचाए जाने वाले दुख हिंसा पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पीड़ितों को समन्वय देने के लिए उनकी संस्कृति, परंपरा आदि को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इमोशनल अब्यूज आखिर क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आज इसी पर एक बात। भावात्मक स्तर पर हिंसा एक उस तरह की हिंसा है जो लोग किसी रिलेशनशिप में महसूस कर सकते हैं, चाहे इसके घाव सामने वाले को दिखाई नहीं देते, पर वो पीड़ित के आत्मविश्वास, उसकी स्वयं की कीमत के प्रति बहुत ही प्रभाव डालते हैं। रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ मैनेजर एमिली मैकडोनल्ड बताती हैं,
It is similar to other forms of abuse in that it's about one person maintaining power and control over another person. In intimate relationships, it's characterized usually around behaviors such as extreme jealousy and possessiveness, isolating you from your friends and family, using manipulation to make you do things you don't want to do, trying to control what you think and feel, what even you might wear or who you'll see.
सकीना पाकिस्तान से हैं और उनका विवाह पाकिस्तान में अपने माता-पिता के विरोध के बावजूद अपने पसंद के व्यक्ति से हुआ। उस व्यक्ति ने उसको यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाने के लिए राजी कर लिया। एक बार वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गई तो उसके पति के रंग ढंग भी बदल गए। उसका बुरा व्यवहार सामने आने लगा, उस पर पैसे का अंकुश लगा दिया गया, उसकी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं, और बस सकीना पर ही आरोप लगाता रहा।
I came here on my own. I spent all of my money just because I used to work overseas in Pakistan. I spent all of the money to him and to his family. I just cried in front of him that please understand me. He was controlling. He didn't allow me to go anywhere. He didn't even open an account.
भावात्मक स्तर पर abuse कई तरह का हो सकता है। इसमें व्यक्ति को सबसे अलग कर देना या उसको मैनिपुलेट करना और फिर अपने कब्जे में कर लेना आदि। मोनिक तो ही एक मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी एक किताब है विदाउट यू राइजिंग अबव द इम्पैक्ट ऑफ एन अब्यूसिव रिलेशनशिप। वो कहती हैं कि ये भावात्मक अब्यूज आंतरिक होता है क्योंकि वो दिखाई तो देता ही नहीं है।
So it can involve a regular pattern of nasty comments or the use of words and or behaviours that make someone feel threatened. Bullying is a part of it, so verbal bullying, constant criticism, as well as a really insidious form of emotional abuse, which is intimidation, shaming and manipulation. So shaming and manipulation are actually quite common, and both involve the abuser blaming. It could be a partner or a colleague or an employee for an action or inaction when they've actually not done anything wrong.
प्रवासी महिलाओं के लिए और भी अधिक बाधाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलियन वुमेन सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स की सीईओ हैं जुमा एल मात्रा। वो कहती हैं कि प्रवासी समुदायों को इस बात का भी पता नहीं है कि उनके लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या सेवाएं और हस्तक्षेप आदि उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये बहुत आवश्यक है कि जो सेवाएं उपलब्ध हैं उन्हें भी संस्कृति आदि का पता हो, ताकि वो पीड़ित को भावात्मक सपोर्ट दे सकें।
The language barrier is a problem, but also failure to understand the culture is a problem. And a lot of women, for example, will believe that in my culture, it is okay for a man to guide my behavior. But what they mean when they say guide my behavior may actually be abusive. In the same way that some women think that men in their culture are responsible for the money, but actually what they're doing is financial abuse.
भावात्मक स्तर पर abused व्यक्ति को लगता है कि अब उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, या अपने उस साथी के बगैर उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। सकीना कहती है कि उसने अपने पति को समझाने की बड़ी कोशिश की, उसके हाथ पांव तक जोड़े, पर वो नहीं बदला। सकीना कहती हैं कि उसके उस दुर्व्यवहार के कारण स्वयं उसमें ही आत्मविश्वास नहीं रहा.
That's a main problem. I still have traumas attack. I'm still having lack of confidence in me. And just because to save my relation, I was like, you know, just don't give me anything. Just save, you know, give my relation back. Please give my relation back. I'm totally lost. I'm totally lost. Not just because of everything had happened to me, but still, I'm tired of begging in front of him to just give me my relation back.
भावात्मक अभ्यूस के घावों का असर लंबा और स्थायी होता है. मनोवैज्ञानिक मोनिक तूही कहती हैं कि ऐसे पीड़ित डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं.
So in many cases, consistent emotional abuse results in depression and anxiety, insomnia. So just staying awake, worrying about what to do next, or is there something wrong with me? And in really serious cases, a consequence can be post-traumatic stress disorder. And I'm actually seeing that more and more, particularly with workplace emotional abuse.
Sakina बताती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा था और उस पर क्या कुछ गुजर रही थी.
I've lost my weight. I don't care whatever I'm eating. I'm totally isolated. I don't want to do anything. Seriously, I don't want to do anything. I better die, not to be alive.
मोनिक बताती हैं कि इस भावात्मक अब्यूज को पहचानने में समय तो लगता है, लेकिन विश्वासपूर्ण लोगों से तुरंत ही सहायता मांगनी चाहिए.
So often trustworthy friends and family members who can see more clearly, who are outside of the dynamic of the relationship you're in with the particular person. But a really easy first point for people is the internet. It can be a useful and quick tool. Your local GP and talking about how a particular relationship is making you feel, and perhaps being referred to a counsellor or a psychologist to talk through it and get a qualified opinion and start to access some support about what to do about it.
एमिली मैकडोनल्ड कहती हैं कि रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया से कई तरह की काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध हैं. वो हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से ढल जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति और कंट्रोल को पहचाना जाए.
It may need the person who is experiencing the emotional abuse to come along on their own first to work out really what they want to do, because it is a power issue, power and control issue. It's not an easy thing to bring your relationship along when you're actually the person who is experiencing emotional abuse.
Sakina इस समय एक संकटकालीन रिहाइश में रह रही हैं. वो कहती हैं कि उसे एक संबल सपोर्ट मिल रहा है और वो अपनी स्थिति से उबरने की कोशिश कर रही हैं, चाहे अभी रास्ता बहुत लंबा है.
They helped me a lot. They helped me in many ways. They have given me shelter here. They are taking care of me. They are so helpful. They are doing counseling as well. I want to be positive, but still it's a gap. It's a long way to go.
डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज ने इमोशनल अब्यूज के विभिन्न रूपों को फैमिली और डोमेस्टिक वायलेंस की सूची में शामिल किया है. अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार में हो रही इस स्थिति या घरेलू हिंसा से बाहर निकलना है तो उसे सपोर्ट सिस्टम में काउंसलिंग और सेंटरलिंक असिस्टेंस भी उपलब्ध होता है. काउंसलिंग, जानकारी और सपोर्ट के लिए कभी भी फोन करें 1-800-737-732 पर. 28 भाषाओं में अनुवादित जानकारी उपलब्ध है या लाइफलाइन पर भी फोन कर सकते हैं 131-114 या 000 पर फोन करें.